Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 or 2331-4444. Once again, 2342-1050 or 2331-4444. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke Tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारी सीधी बातचीत आप श्रोताओं से हुआ करती है। आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2342-1050 या फिर 2331-4444। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम शरद।
नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
एफपीआई सेल ओवर 17,000 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटीज इन मई so far. India's factory output expanded by 5.8% in financial year 2024, but eases to 4.9% in March. Gold futures slipped marginally by 0.9% at 72,722 rupees.
FPIs ने मई महीने में अब तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटीज की बिकवाली की। वित्त वर्ष 2024 में भारत में फैक्ट्री उत्पादन में अब तक 5.8% की हुई वृद्धि, लेकिन मार्च महीने में 4.9% का हुआ विकास। और वायदा बाजार में सोने का मूल्य 0.9% घटकर 72,722 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में बीते कारोबारी सप्ताह में इस बार अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। हालांकि अंतिम दिन यानी शुक्रवार को थोड़ी सी लिवाली हुई और बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बंद हुए। साप्ताहिक आधार पर इस बार दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2% घाटे के साथ बंद हुए। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां बीएसई मिड कैप इंडेक्स 3% नुकसान में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की गिरावट हुई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की ओर से आम चुनाव के नतीजों से पहले अच्छी खासी बिकवाली किए जाने को घरेलू बाजार में हुई गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। गौरतलब है कि पूंजी बाजार में अनिश्चितताओं को देखते हुए भारतीय उतार चढ़ाव सूचकांक इस सप्ताह 26% से ऊपर पहुंच चुका है।
वी हैव अ फर्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस फ्रॉम छत्तीसगढ़, कुश, वार्म वेलकम, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
जी नमस्कार सर, शरद सर को मेरा नमस्कार।
नमस्कार कुछ
सर, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आजकल कई तरह से ये देखा जाता है और बहुत विशेषज्ञ अलग अलग अपनी राय देते हैं। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर हमें लंबे समय तक रहना है तो हमें घर को खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि परचेजिंग पावर क्या होता है।
चलिए कुश, आपका पहला सवाल तो बहुत आपने आसान सवाल किया है। आपने कहा लंबे समय तक रहना है, तो लंबे समय तक रहना है तो घर तो अपना ही होना चाहिए कुश, क्योंकि अगर आप उसका रेंट देते रहेंगे तो एक तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपके नाम हो सकती थी उससे वंचित रह जाएंगे। दूसरा, आपको हर साल एक कॉस्ट आती रहेगी और जितनी आप कॉस्ट देते हैं, हम तो जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं, मैं मनोज और राजेश का भी ध्यान इधर चाहूंगा कि जो आप ईएमआई देते हैं हर साल अपने उधार लेके, भी मान लीजिए आपने घर लिया, कुछ लोन लिया है, तो वो ईएमआई जोड़ते हैं कुछ लोग, तो हम तो आजकल कैलकुलेशन करते हैं कि रेंट के बराबर ही आती है, तो कम से कम आप अपने घर में तो हैं। दूसरा, कुछ किराए के मकान में एक दिक्कत ये आती है कि कभी भी मकान मालिक साहब आपको कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, या हमें यहां पर कुछ और काम कराना है। बहुत लंबे समय तक मैंने देखा है कि मकान मालिक किराएदारों को रखते भी नहीं है, वो थोड़ा सा उनको डर लगता है कि कहीं हमारे मकान पर कब्जा ना हो जाए वगैरह। दूसरा, आपने पूछा परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर होती है जो आपकी खरीदारी की क्षमता होती है। खरीदारी की क्षमता करते जैसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी निकालते हैं। परचेजिंग पावर शब्द का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, मैं सबसे जो मुख्य है वो पीपीपी हम उसको कहते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी, जैसे एक देश में आपको अगर $1 इतने सामान दे रहा है, तो दूसरे देश में $1 कितना सामान दे रहा है, इसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। तो परचेजिंग पावर का मतलब है आपकी खरीदारी करने की क्षमता, कि आपके पास मान लीजिए जेब में ₹100 हैं, तो ₹100 से आप कितना सामान खरीदने की आपके अंदर क्षमता है, ये देश के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, ये अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग बदलती रहती है, अलग अलग हो सकती है।
शरद, देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस रेंट एंड बाइंग ऑफ द हाउस। यू आर इन्वेस्टिंग होल लॉट ऑफ मनी इनटू समथिंग, और इफ यू पुट दैट इनटू एफडी, यू गेट एन इंटरेस्ट, यू यूज दैट फॉर यूटिलाइजिंग और गिविंग अवे द रेंट, एंड देन रेस्ट ऑफ द मनी इज योर्स फॉरएवर।
वेरी पर्टिनेंट पॉइंट राजेश, आई थॉट दिस वॉज ऑलरेडी ऑन माई माइंड एंड आई कुड सी ऑन योर फेस दैट यू प्रोबेबली वॉन्टेड टू आस्क समथिंग लाइक दैट, बट यू नो हियर आर द डाउन साइड्स ऑफ वॉट यू सेड। इफ यू गो फॉर दैट ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी। आई मीन आई थिंक इन द इंडियन सोसाइटी टू बी हैविंग योर ओन हाउस इज ऑल्सो एन इमोशनल फैक्टर that we are staying, हमारे सर के ऊपर छत है। आई मीन द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम आवास योजना, इट वॉज के हर सर पर छत, तो उसका यू नो दैट ऑल्सो हैज अ मीनिंग दैट इमोशनली पीपल आर कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी। इनफैक्ट पीपल फील पेन वेन दे हैव टू लीव देर ओन प्रॉपर्टी, नंबर वन। नंबर टू, एज आई सेड इन द रीजन, यू विल हैव टू कीप स्विचिंग हाउसेज, एंड आई थिंक शिफ्टिंग ऑफ अ हाउस इज नो मीन टास्क। आई थिंक इट इज अ हर्क्यूलियन टास्क टू बी मूविंग हाउस एवरी 2-3 years, एंड यू कैनॉट एस्टैब्लिश योर सेल्फ, योर एड्रेस कीप्स चेंजिंग, देर आर सो मेनी इनकन्वीनियंसेज, योर एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग, योर मार्केट्स, योर स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, यू हैव टू लुक एट सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रेंटेड हाउस विज़ावी सेल्फ ओन्ड हाउस, Well, I might burn away rest of your show time, so I'd like to limit myself here.
तो हम यहाँ श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे बेंगलोर, समय नष्ट न करते हुए, और आमंत्रित करना चाहेंगे अपने श्रोता एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब को स्वागत है आपका, सवाल आई पूछिए।
गुड इवनिंग, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो मिस्टर कोहली।
हेलो मिस्टर प्रसाद।
या देर आर टू क्वेश्चन। ऑन थर्सडे सनसेक्स फेल डाउन ओवर 1093 पॉइंट, any specific reason for the same?
Okay.
My second question is, Citigroup recommends, rather they say that Nifty 50 likely to reach by 23,900 by end of this financial year, that is 24-25. Now at the current level it is at 22,000, 1,900 points in just in the remaining 11 months.
Well, Mr. Prasad,
I need your expert views on this.
Got your questions, Mr. Prasad. Your first question was, why did the Sensex shed such a big lot on Thursday? I think that was your question. 1,090 Nifty shed 345 odd points. I think, you see, market is a very complex place, and they were. I remember when we were sitting in the market, because I spend most of the time on my market when the market is open, starting from 9 o'clock when the pre-opening happens, and right from 9:15 to 3:30 for those 6 hours and a quarter, rather 6.5 hours, I'm literally glued to the screen. There were rumors that, you know, there is some kind of FPIs felt that there were political uncertainty over some of the unofficial exit polls. It turned out to be a rumor. So I think a market is reactive to rumors. And when the rumor is relating to sustainability of a political setup, obviously it comes under question. But it turned out to be a rumor. I think that was very, very speculative. And you found the next day market recovered, Nifty recovered by about 100 points. So I think market, sometimes the flow of news, it may not be correct. But then market, as I said, is a very sensitive. We call it as the sensitivity index. So what does sensitivity index means? It's very, very sensitive to false and true news, to good and bad news. So I think I think that was, it was just an aberration. We've got a word in English called aberration. So we treat that as an aberration. Your second question was, somebody has predicted Nifty to be 23,911 months. Well, in the last 6 months before Nifty reached 22,000, it took Nifty merely 6 to 7 months to cross over 1800 points. So therefore for Nifty to reach 1900 points in 11 months is quite possible. It's not an astonishing piece of news or astonishing piece of analysis. It all depends, you know, in the market. I'll tell you something very interesting, and this would be interesting for all the listeners. In the market, we say that never predict market. Predict market. But, you know, the analysts and the analytical companies, you know, who go into detailed analysis, they do make projections on the basis of fundamental technical analysis, and they have a right to, everybody's got a right to make a projection. But if you go by hardcore market rules, we never make a prediction. So if all goes well, Mr. Prasad, in Hindi, there is a saying, you come from Bangalore, but we are sitting and doing the show in North India. They say, aapke muh mein ghee shakkar. If that happens, nothing like it.
Sharad, Thursday's outcome also goes out to prove that stable government is extremely important for the...
Absolutely, absolutely. The moment that rumor was there, thankfully it turned out to be a rumor, that because the policy making, the reforms, and the country gets driven, the corporate world gets driven by the government policies. So if the government policies are not static, if they are not futuristic, well, no corporate environment can probably thrive in such a situation.
If time permits, we will talk about this. SPS Jain from Greater Noida is with us. A warm welcome, Mr. Jain, after a long time.
Namaskar, sir ji.
Namaskar, Jain sir.
Aap mujhe ghar ka address dijiye. I want to visit your wardrobe.
Arey? Mujhe nahi pata aapko radio pe mera wardrobe kaise dikh jata hai. Aapka radio pehle kaun sa hai? Main ye pata lagana tha. Ji.
Abhi aapne PPP ki baat ki. Ji. So as per purchase power parity mein.
Ji.
India ki economic status. पांचवा है या चौथा या उससे नीचे
तीसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम तीसरे नंबर पे अभी से पहुंच चुके हैं
जी जी अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अभी मार्केट इज डायरेक्शन लेस इट इज वर्किंग ऑन र्यूमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम
जी
बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मी यू एंड ऑल पीपल लाइक दस
जी
वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई र्यूमर्स सो मार्केट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड तो इस पीरियड में
जी
शैल बी बुक आई एम सिटिंग ऑन सम शेयर 25% 30% profit.
जी
तो कुछ book कर लिया जाए because you have always been saying money in the bank is good in the whatever like that.
जी एक शर्त पे मैं आपको book करने की सलाह दूंगा कि उस profit में से हम लोगों के लिए कोई लड्डू वड्डू कभी आ जाए जी हाँ ये तो रही मजाक की बात पर अगर हम serious note पे बात करें बिल्कुल मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ मनोज और राजेश भी उनको याद होगा कि आपके जब प्रॉफिट आ रहा है तो आपको बुक करके चलना चाहिए क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी का फैक्टर हमेशा बना रहता है जैन साहब तो कल को पता नहीं क्या हो मार्केट कल को क्या खोलो इनफैक्ट एक मजेदार बात है जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूं किसी को कि वो इंट्राडे ट्रेड करें पर जो इंट्राडे ट्रेड मनोज होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स वो ये कहते हैं हम रात को चांसेस होते हैं क्यों चांसेस होते हैं क्योंकि जो मार्केट 3:30 बजे बंद होता है उससे पहले वो अपना सारा हिसाब किताब बराबर कर बैठे होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जैन साहब जो कि जिनको कि रोज के रोज 3:30 बजे से प्रॉफिट तो ये तो खैर इंट्राडे ट्रेडर्स की बात रही पर बिल्कुल आपका सोचना ठीक है अगर पूरा नहीं करना चाहते जैन साहब तो आंशिक रूप से आप कुछ मुनाफा उसमें बुक कर चलें और उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगी और ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की कभी हो जाती है कभी ये सेल ऑन राइज की हो जाती है जब जब मार्केट नीचे जाए जैन साहब तो आप एसआईपी के माध्यम से मतलब एसआईपी या म्यूचुअल फंड वाले के मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं एसआईपी एक निवेश करने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करें जी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें और जैन साहब जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें बताइएगा जरूर कि कितना प्रॉफिट आपने बुक किया अगर आपको उचित लगे तो
From Jaipur, we are joined in by Jitendra. Warm welcome, Jitendra.
Thank you. हाँ सर कोहली जी एक सवा एक महीने पहले की बात है मैं पब्लिक स्पीक सुन रहा था तो आपकी आवाज सुन के मैंने रुक गया तो आप थे और बलवंत जी थे और चंद्रिका एंकर थे
जी.
तो उसमें पेंशन को लेके डिस्कशन हो रहा था तो उसमें आपने एक वर्ड बताया कि अटल पेंशन में सरकार कंट्रीब्यूट करती है तो मैं आपका एक रिकॉर्ड ठीक कराना चाहता हूँ सिर्फ स्टार्टिंग के 5 साल ही सरकार कंट्रीब्यूट की थी
जी.
उसके बाद सरकार उस पर बंद कर दी थी कंट्रीब्यूट करना जब अटल पेंशन चालू होता तभी कंट्रीब्यूट
जी जी
जी 1000 पर साल
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने जितेंद्र शुरू में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मैंने उसको करंट सिचुएशन के लिए मुझे याद है नहीं बोला था मैंने कहा था अटल पेंशन योजना जब बनाई गई थी क्योंकि रात को एक कार्यक्रम आ रहा था तो जब बनाई गई थी तो उस समय सरकार ने इस पे कंट्रीब्यूट तो सरकार की मंशा थी हम वो उस कार्यक्रम में ये डिस्कस करें कि सरकार की मंशा एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम करने की है तो क्योंकि सरकार की ये मंशा थी उन्होंने अटल पेंशन योजना को स्ट्रक्चरली इस प्रकार से बनाया कि उन्होंने शुरू में उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो जिन लोगों ने उसमें भागीदारी करी उनको ये फायदा मिला। तो मैं यही बताना चाह रहा था जितेंद्र साहब, अगर मेरे मुंह से कहीं ऐसा निकला कि भाई आज भी सरकार कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मेरा मंशा यही थी कि अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना गरीब वर्ग के लिए बनाई गई जिसमें सरकार खुद आगे बढ़कर आपके भविष्य के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए अपना योगदान देती है।
आइए वापस लौटें दिल्ली। दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर प्रेम पुजारी। स्वागत है प्रेम, आपका सवाल पूछिए।
हेलो नमस्कार
जी।
जी सूरज जी नमस्कार।
नमस्कार प्रेम पुजारी जी, आपका तो नाम इतना अपना मधुर है जी, बताइए।
सर आप भी बहुत ही बढ़िया। पूछना चाहता हूँ ये गोल्ड का क्या भंडार सर, ये जब देखते हैं कि कभी हम 12,000 पे सुनते थे, कभी 4,000 पे सुनते, आज 70,000 71,000, तो इसकी कहाँ तक छलांग लंबी होने की वो है ये, तो क्योंकि ये तो गोल्ड।
जी जी जी, आपका प्रश्न प्रेम पुजारी जी समझ में आ गया। जी हाँ, गोल्ड से जिसने प्रेम किया वो वाकई में उसको मनोज आज तक पूछता है।
जी जी बिल्कुल,
तो
बिल्कुल।
मैं प्रेम पुजारी जी के नाम से ही मैं उनका उत्तर भी दे रहा हूँ। और मैं तो शुरू से, आपको पता है कि बहुत कई वर्ष मुझे हो गए मार्केट मंत्रा पे भी, मैं शुरू से बोलता हूँ, जिन लोगों ने मेरी उस समय बात सुनी, तो गोल्ड एक ऐसी बस है कि आप उसमें आज भी सवार हो जाए तो आपको वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। और मैं तो कहता हूँ सोने के साथ सोना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबी अवधि के लिए उसको लेना चाहिए। और सोने की तो बिल्कुल चांदी हो गई है, मतलब सोने की ऐसा हो गया है कि सोना। और क्यों वो इस वजह से है, आपने फंडा पूछा प्रेम पुजारी जी, उसका वजह यह है कि गोल्ड बहुत सारे आजकल जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में, आपको हैरानी होगी जान के कि चीन का सेंट्रल बैंक बेतहाशा गोल्ड खरीद रहा है। यूरोप के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स को मैं जानता हूं जो बेतहाशा गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है और डॉलर का एक रिप्लेसमेंट माना जाता है। तो कल को अगर डॉलर कामयाब नहीं रहा तो गोल्ड एक ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप कल को बार्गेन कर सकते हैं। और एक जो अच्छी बात नहीं है पर गोल्ड की कीमत के लिए अच्छी है, वो ये कि गोल्ड को अशांति पसंद है। तो जब जब दुनिया में अशांति होती है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो गोल्ड चमकने लगता है। अब देखिए, हम और आप तो इस अशांति को काश रोक पाते, नहीं रोक पाते, तो अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो गोल्ड को चमकने दीजिए और आप भी उस बस में सवार होइए और आपके पोर्टफोलियो का 15% से 20% मुझे लगता है कि गोल्ड में निवेश रहना चाहिए लंबी अवधि के लिए।
Moving on, the foreign portfolio investors have been on a selling spree in May, offloading over ₹17,000 crore worth of Indian equities. This trend has been influenced by the rise in US bond yields and the stronger performance of Chinese and Hong Kong markets. According to the data provided by National Securities Depository Limited, FPIs bought equities worth over ₹1,08,000 crore and sold over ₹1,26,000 crore till May in this month. Heavy selling by FPIs also contributed to the fall in benchmark stock market indices, Sensex and the Nifty 50, which declined by 2.6% each in the current month. Also, the factory output as measured by the Index of Industrial Production, IIPs, rose to 4.9%, much higher than the 1.9% recorded in the same month last year. However, the latest IIP figures was lower than the 5.7% recorded in February 2024. For the full financial year 23-24, the factory output grew 5.8%, marginally higher than 5.2% in the previous year, with a pickup in manufacturing and construction goods output. According to the Index of Industrial Production data released yesterday, manufacturing grew at a five-month high of 5.2% in March 2024 and by 5.5% for the full fiscal year 2023-24. Mining was slower by 1.2% in March and by 7.5% in the fiscal. Electricity generation expanded by 8.6% in March and grew by 7.1% between April 23 and March 2024. Sharad, on the consumption front, consumer durables output, which reflects the consumption demand, grew 9.5% in March as against 12.4% in Feb. And that was actually a low base of minus 8% in the year-ago period. The data that I mentioned about IIP, along with the consumption data, what is your take on it?
I think the month of March, Rajesh, per se, is the end of the fiscal year in India, end of the financial year. So a lot of people who end their or close their books of account, you know, sometimes you see a spurt. Like, for example, the GST numbers which came for the month of March in April, they suddenly shot up. But whereas, the month of March, I feel, is not the right month to judge the trend, because it's the end of the financial year and you find a lot of variations happening in March because of some people go on a spurt and some people they hold back. Mm-hmm. So therefore, month of March is a very, very interesting and a very different month as compared to rest of the year as far as consumption is concerned.
Also, we would like to take your views on the foreign portfolio investors who are on the selling spree, offloading nearly 17,000 crore rupees. What will hold them back? As you mentioned, sentiments are not so good.
No, because I think the bond yields still continue to be over 4.5%.
So that gives them
a better return back home. And second, of course, is, you know, Fed not deciding to sort of, we keep hearing mixed, you know, reactions from various Fed governors in the States. Well, somebody says it'll happen anytime soon. Next week we hear, no, this is not the right time. We must have inflation under control. So you keep getting these mixed views, but overall view says that the Fed rate cut is not going to happen anytime soon. So that is also propelling this sell-off. And of course, one of the reasons of sell-off is that there's a lot of geopolitical conflict situation, you know, between America and here. If we take them from America, most of them. Then I think, so in the middle, from where the money has been invested, there's a lot happening. So they probably want to take it to a safer haven and better to keep the money at home, not to keep it elsewhere. So there are various reasons why these FPIs. But I think it'll be a matter of time, Rajesh, before the tables start turning.
आइए आमंत्रित करें दिल्ली से योगेश शर्मा जी को, जो काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं चर्चा यानी सवाल पूछने के लिए. सवाल पूछिए.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार आप सभी को और शरद जी को. बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शरद जी आप आए और बाहर आई.
अरे आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा. बताइए योगेश.
सर मेरा सवाल ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और रिजल्ट को लेकर के बहुत लोगों में रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. मेरा सवाल पीएसयू स्टॉक को लेकर के है, क्योंकि ये ज्यादातर लगातार डायरेक्टली गवर्नमेंट के संपर्क में या गवर्नमेंट से ही जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं. तो क्या ये माना जाए कि अगर मार्केट गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो पीएसयू स्टॉक नीचे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पॉलिसीज में चेंज होगा?
देखिए योगेश, हम कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स से तो मैं अपने आप को पीछे रखना चाहूंगा. हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कोई पॉलिटिकल स्पेकुलेशन या पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हम यहाँ पर नहीं करते हैं. पर मैं आपको ये यकीनन बता सकता हूँ कि पीएसयू कंपनीज का परफॉर्मेंस पिछले सालों में बहुत सुधरा है, और खासकर जो कंपनीज डिफेंस सेक्टर से आती हैं, BHEL है, BEL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनीज है सरकारी क्षेत्र की जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कई जगह उन्होंने पीएसयूज का जिक्र किया है, पीएसयूज और पीएसईज का जिक्र किया, सरकारी बैंकों का भी जिक्र किया. उनमें बहुत सफाई हुई है, उनके एनपीएस कम हुए. तो मुझे लगता है सरकार कोई भी हो, यहां पर ये पॉलिटिक्स से हटके मैं बात कर रहा हूं, पीएसयूज की रफ्तार ग्रोथ की वो रुकने वाली नहीं है. मुझे लगता है कि अब जो उनको जो रास्ता दिख गया है, उनको ये समझ में आ गया है कि उनकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गई है, टारगेट्स पे काम करते हैं, उनके सेल्स पे नजर रहती है, रेवेन्यू पे नजर रहती है. पहले ऐसा थोड़ा सा कम देखा जाता था. तो अब जब कॉरपोरेट कल्चर जब पीएसयूज में पूरी तरह से उनके अंदर समा चुका है, तो मुझे लग रहा है, अंग्रेजी में शब्द होता है, दे आर अनस्टॉपेबल. वो लोग अब रुकने वाले नहीं है. तो आप इस बात से निश्चिंत रहें और आप पीएसयूज में लंबी अवधि के लिए अच्छे पीएसयू में जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उनमें आप सिलेक्टिव बेसिस पर निवेश करने का सोच सकते हैं.
दिल्ली से ही हमारे साथ फोनलाइन पर हैं भारत भूषण. स्वागत है भारत जी, सवाल पूछिए.
जी नमस्कार सभी को.
जी नमस्कार.
मेरा प्रश्न भारत सर से ये है
जी,
कि जो प्राकृतिक आपदा से जो सूखा है, बाढ़ है
जी,
जो इससे फसल नुकसान हो जाती है किसानों की
जी,
देश के किसी भी हिस्से में
जी,
तो क्या सरकार जो किसान को मुआवजा देती है
जी,
तो प्रति एकड़ में जितनी उपज होती है पिछले सीजन में
जी,
उसके हिसाब से पूरे फसल की मतलब कैलकुलेशन करके मुहैया मुआवजा देती है? एक तो सर ये प्रश्न है. दूसरा फसल बीमा जो है, तो फसल बीमा क्या हिसाब किताब क्या, जैसे मान लीजिए एक एकड़ में किसी किसान का अनाज खेत है तो उसमें कितना बीमा का राशि बीमा कंपनी को देना होता है, कितना प्रतिशत के हिसाब से, थोड़ा समझाइए सर.
भारत भूषण जी, आपका जो पहला प्रश्न था कि सरकार मुआवजा किस हिसाब से देती है क्रॉप लॉस, देखिए ये क्रॉप लॉस अगर मान लीजिए बाढ़ की वजह से हुआ है या सूखे की वजह से हुआ है, तो पहले सरकार जो खासकर जो राज्य सरकारें हैं वो एक कमेटी बनाती हैं ये असेस करने के लिए कि आपका कितना लॉस हुआ है। और आप पहले, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप पहले वहां पर क्या उगा रहे थे? मान लीजिए मेरे पास 2 हेक्टेयर है और मैं वहां पर गेहूं की फसल कर रहा था, तो वो 2 हेक्टेयर सरकार के पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस इलाके में मान लीजिए राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, जहां भी वो लोकेटेड है वहां पर 2 हेक्टेयर जमीन में कितना गेहूं की उपज हो रही थी और उसकी आपको मंडी में जाके क्या प्राइस उसकी मिल रही थी, उसके आधार पर वो कमेटी रिकमेंडेशन देती है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जितना लॉस हुआ 100% उसकी भरपाई सरकार कर पाती है, क्योंकि सरकार के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और कई दफे मैंने ये देखा है जमीनी तौर पर ये भी दिक्कत आती है कि लॉस को असेस करने में, क्योंकि कई दफे आपका जो होल्डिंग, लैंड होल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फसल कई बार आधी पौनी लगी होती है, कई बार फसल पहले से ही कुछ नुकसान में होती है, तो बहुत एक कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी होती है जो इस पर निर्णय लेती है। आपने दूसरा पूछा कि क्रॉप इंश्योरेंस करा जाता है, आप जो हमने पहले बात करी उसी से संबंधित है कि ये देखा जाता है कि आपको आपकी फसल कितने की है और अगर ये घाटा होता है तो कितने का है। बाकी मैं आपको ये यकीनन तो इस समय मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किस फसल का कितना बीमा जाता है, कितने बीमे का प्रीमियम जाता है। आप कहेंगे तो मैं इस पर अगली बार जब आऊंगा तो इस पर रिसर्च करके लाऊंगा और आपको ये बताएंगे कि किस फसल पर कितनी जमीन पर कितना इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है। पर मैं ये आपको यकीनन तौर पर बता सकता हूं कि किसानों से जो क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम है बहुत ही मिनिमल अमाउंट लिया जाता है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है और ये बड़ा आसानी से किसान इसको दे सकते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से हमारे जो किसान भाई अगर हमको सुन रहे हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो लोग अपना फसल का बीमा जरूर कराएं। भले ही आपकी अपनी जो वेदर प्रेडिक्शन है वो कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो, पर फसल बीमा आप जरूर करा के चलाएं। उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन बीमा जरूरी है, मैं समझता हूं फसल का बीमा भी बहुत जरूरी है। तो आज धन्यवाद, आपके माध्यम से हम ये संदेश अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सके।
Joining us from Delhi is Ajay. A warm welcome, Ajay. Please go ahead and ask your question.
Namaskar, ji.
Namaskar.
Namaskar, Ajay. ji.
ITO में हम लगाते हैं, मैक्सिमम लगाते हैं जैसे।
जी।
तो उसका रेशो क्या रहता है? जैसे हमने मैक्सिमम लगा दिए। तो आते जा?
जी। मेरे ख्याल आपका रेशियो से, क्योंकि समय कम है तो रेशियो से मुझे लगता है ये पूछ रहे हैं कि भाई हम कितना लगाएं तो कितनी उसके अलॉटमेंट होते हैं। अजय जी, ये कोई इसका फिक्स मापदंड नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। मान लीजिए 100 रुपए का आईपीओ है और उसमें 500 रुपए आ जाते हैं तो वो नेचुरली वो 1:5 की रेशियो में अलॉट किया जाता है। तो ये निर्णय अजय जी तब लिया जाता है जब सारा का सारा सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता है, जब पूरा आईपीओ क्लोज हो जाता है और जब मर्चेंट बैंकर्स इस बात को असेस करते हैं कि कुल मिला के पैसा कितना आया। तो अब शेयर्स तो उतने ही हैं तो उसको लोगों में बांटने हैं तो उसी हिसाब से उसको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी जाती है। और आजकल तो प्राइस बैंड होता है तो आप जो बिड लगाते हैं ऐसे में जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपको अपर बिड लगानी चाहिए। आपको पता होगा आईपीओ में आजकल रेंज दी जाती है, तो जब आईपीओ बहुत मशहूर हो और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही हो तो ऐसे आईपीओ में आपको ऊंची बिड लगानी चाहिए, उसमें आपको अलॉटमेंट के चांस ज्यादा हो जाते हैं।
आइए चलें सराफा बाजार। सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक जून में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 5 रुपए घटकर 72,722 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति होने वाली चांदी 74 रुपए बढ़त के साथ 84,984 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत दिख रहा था। सोने का मूल्य लगभग 1.5% बढ़त के साथ $2,375 प्रति औंस पर था। चांदी भी मजबूती के साथ $28.51 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, FPI sell over 17,000 crore worth of equities in May so far. India's factory output expanded by 5.8% in financial year 2024, but eases to 4.9% in March. And gold futures slipped marginally by 0.9% at 72,722 rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.